प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने तथा हमारी ओर से भी आप सभी मणिनगर और मणिनगर के कनेक्शन में आए हुए सभी भाई बहनों का इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में, सब दादियों की भी कर्म भूमि में, परिवर्तन भूमि में जितने गुण गाए उतने कम ऐसे स्थान पर आप सभी पधारे हैं, तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी बहनों को स्थान चाहिए, जो पीछे अगर नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठे, भाई काफी यंग भी है जगह, हाँ जो नीचे बैठ सकते हैं बहने उस तरफ भी जाए, जगह थोड़ा थोड़ा और आगे आ सकते हैं और भी आगे आ जाएं भाई लोग, जो नीचे बैठ सकते हैं अवश्य नीचे बैठे। मधुबन तपोभूमि में बट्टी करना ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। बहुतों की रिक्वेस्ट आती है लेकिन इतने सबको हम कहाँ समाएं, ये भी मुश्किल है क्योंकि स्थान तो छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी हमारी बठियां चल रही है। 2 साल तक कोरोना काल में बठियां नहीं हुई तो बहुतों की रिक्वेस्ट थी हम मधुबन में बठी करें, और आप सब भाग्यशाली भाई बहने हैं जिनको यह मौका मिला है। वैसे तो कईयों के नाम होंगे परंतु कईयों का लास्ट मिनट कैंसिल भी हो गया होगा और कईयों का लास्ट मिनट, हाँ थोड़ा आगे बैठे, ये इतने से आराम से बैठो, आगे आ जाओ, ये यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। कईयों का लास्ट मिनट एडिशन हुआ होगा क्योंकि कुछ भाई बहनों ने फिर प्रोग्राम कैंसिल किया। कल भी हमको हमारे चंद्रशेखर भाई बता रहे थे कि इतनी लंबी लिस्ट हो गई है, हमने उनको कहा भाई इतने सब कहाँ पांडव भवन में समाएंगे, फिर ओम निवास में रखना पड़ेगा। रखा क्या ओम निवास में, नहीं ना, सबको समा दिया। चलो अच्छी बात है, नहीं तो हमने कहा ओम निवास में क्यों रखना है, आप देखो क्योंकि टीचर्स बहने भी नीचे से बहुत आई थी, कुमारियां भी बहुत आई थी और सबका एक दिन के लिए रहना है, तो आज तो सब नीचे गए क्योंकि आज से नीचे एक तरफ कुमारियों की बट्टी है और दूसरी तरफ बड़ी टीचर्स की बट्टी है, तो कल तो यहाँ उनकी रिमझिम थी, तो आज आप सभी पहुंचे हो, मौसम भी आपके लिए खुल गया है, नहीं तो 3 दिन तो इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, आप लोगों के लिए बड़ा सुहावना मौसम हो गया है, झरने देखे होंगे आप लोगों ने, देखे हाँ अच्छा लगा ना, माउंट आबू खास झरना देखने के लिए आते हैं लोग दूर दूर से, तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली और आपके लिए मौसम भी खुल गया, तो जो पहले पहले आए थे उनको हम लोगों ने थैंक्स दिया कि आप लोग बारिश लाए, पर आप लोगों को थैंक्स दे रहे हैं कि बाहरी मौसम लाए। जरूर जरूर, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारी नेहा बहन, नंदा बहन, नंदी बहन, हाँ इतने नंदा बहन आप तो इतनी मेहनत करते हैं, इतना विशाल मणिनगर का जो सब जोन है उसको इतना सुंदर पालना दे रहे हैं, हमारी सरला दीदी की याद अवश्य में आ रही है आप सभी को देख करके, और जीजीआरसी भी हमने देखा बहुत ही सुंदर बन गया है। कईयों ने उसमें स्थान भी लिया होगा। हाँ, जिन्होंने जीजीआरसी में स्थान लिया वो हाथ उठाएं। अरे वाह, सब ने 90 लोग आए हैं जिन्होंने जीजीआरसी में स्थान लिया है। अच्छा, वेरी गुड। हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं बहुत अच्छा। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिल करके। हम आए थे देखने के लिए और बहुत जल्दी जल्दी निर्माण का कार्य बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बहुत है, तो ये भी कहीं छोटा न पड़ जाए वो तो बाबा के बच्चों को वरदान है कि जितना भी लो वो छोटा ही पड़ना है। यहाँ भी देखो, मधुबन पहले कितना छोटा था, फिर ज्ञान सरोवर बना। तो ज्ञान सरोवर यहाँ पर तो हॉल तो बहुत बड़ा था, लेकिन बाबा ने कहा कि कहाँ रहेंगे, अकोमोडेशन यहाँ कहाँ है। तो फिर ज्ञान सरोवर बनाया अकोमोडेशन के हिसाब से, लेकिन वहाँ का हारमोनी हॉल तो उनकी भेंट में छोटा है। तो बाबा ने कहा ये हॉल तो बहुत छोटा है, हारमोनी हॉल का जब उद्घाटन किया, अब इससे बड़ा हॉल लो। तो फिर तो देखो, शांति वन का भव्य हॉल, डायमंड हॉल बाबा की प्रेरणा से बना, और आज कितना विशाल रूप यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय खास हेडक्वार्टर्स दे रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज भारत का राष्ट्रपति कौन बनी, हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कैसे वो बाबा की बच्ची है, बहुत प्यार है बाबा से, बहुत प्यार है बाबा के बच्चों से। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, माइक बनेंगे, ये नंबर वन माइक बनी है सचमुच। और एक वायरल हो रही है, कोई वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि एक दिन राष्ट्रपति आपका हो जाए, राष्ट्रपति भवन आपका हो जाएगा। पता नहीं व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है जो बात मत पूछो। तो आज तो पहली बार जब इनका कार्यक्रम चल रहा था, तो पहले तो वो सदन जो इनका राष्ट्र वहाँ जो इनका पार्लियामेंट है उसमें ओथ सेरेमनी हुई, लेकिन फिर तो राष्ट्रपति भवन आए और उसमें ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी निमंत्रण मिला। पहली बार ब्रह्मा कुमारी बहनों को इस प्रकार निमंत्रण मिला ऐसे ओथ सेरेमनी में। तो आज वो भी एक बहुत सुंदर अवसर था। तो बहनों को देख करके तो वो तो बहुत खुश होती है। अब देखो ड्रामा में आगे क्या बाबा को कराना है, चमत्कार तो होने ही है। और जैसे बाबा कहते हैं कि आपका आपकी जय जयकार होगी। पहले तो कहते थे कि आप लोग जो कार्य करते हो बहुत अच्छा है, पर वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी यही सुनाते हैं, वो भी ऐसे ही वैल्यूज की बातें करते हैं जैसे आप करते हो। तो कहते थे वो भी, अभी वो समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही, हाँ आप ही, अभी कहेंगे आप भी और फिर कहेंगे आप ही, ये अंतर जरूर पढ़ना है। और बाबा ने ये भी कहा जब आपकी वृद्धि होगी तो अपने आप आत्माएं खींच करके बाबा के घर आएंगी, बाबा के पास आएंगी, और वो हम देख रहे हैं। तो जो बाबा के महावाक्य हैं वो सब सिद्ध होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये अनुभव बढ़ता ही जा रहा है। और तो और 2 साल तक तो कोरोना काल के कारण कोई सेवा केंद्र पर मुश्किल से जा सके, लेकिन उससे एक फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन हमारे कितने क्लासेस हो गए। तो अभी जो बट्टी में कई आए हैं वो कहते हैं हम ऑनलाइन बच्चे हैं, हम जूम बच्चे हैं तो यहाँ भी कोई बैठे होंगे जो जूम पर अपने घरों में ही क्लासेस किया या कोर्स किया और अभी बट्टी में आए। ऐसे है क्या, कोई कोई है तो हाथ उठाओ, इस ग्रुप में नहीं है, पुरानों को अधिक बुलाया होगा ना। हाँ नहीं नहीं है इतने ना, हम धंधा बैठ नहीं है, नहीं नहीं है, सारे पुराने हैं। तो बहुत अच्छा। लेकिन अभी कुछ भट्टियों में ऐसे भी आए थे जो कहते हम जूम बेबी है जूम बेबी, तो ये भी अच्छा है। तो बाबा तो कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली, और इतने उमंग उत्साह में थे वो टीचर्स गए तो नहीं हम तो जाएंगे मधुबन, हम जाएंगे मधुबन, तो उनको भी ले आए थे भट्टी में। लेकिन अवश्य समय तो केवल बीत रहा है ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन समय उड़ता जा रहा है। तो समय उड़ता जा रहा है तो हमको भी क्या करना है, उड़ना है, चलना नहीं है केवल, हाँ चलना नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, अभी उड़ना है। क्योंकि समय कम है और मंजिल तो अभी दूर ही है, तो जरूर अपनी गति को बढ़ाना होगा। तो गति को कैसे बढ़ाएंगे, जब बाबा की हर श्रीमत का पालन करेंगे। बाबा की अभी जो लेटेस्ट मुरलियां चल रही है वो तपस्या वर्ष 1991 था, उस तपस्या वर्ष में बाबा की अभी जो लेटेस्ट 4 मुरलियां चली है, जिसमें बाबा ने सबसे पहले बताया हाँ पर तपस्या किसको कहेंगे, जिसमें पवित्रता की पर्सनालिटी हो, पवित्रता की पर्सनालिटी। फिर दूसरी मुरली चली रॉयल्टी, रॉयल्टी। फिर तीसरी मुरली चली सत्यता पर, सत्यता। और अभी जो कल मुरली चली परसों ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये बाबा की जो श्रीमत हमें मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में धारण कर इतना श्रेष्ठ बनते हैं, उसके आधार से ही हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, उसके पहले कर्मातीत बनना है। कर्मातीत का भी बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ दिया है कि कर्म के फल के बंधन से परे। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म का फल ये भी एक बंधन है। दुनिया में हम देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा जो मैं ये करूं। बाबा कहते तुमको वो नहीं देखना है, तुमको श्रेष्ठ कर्म करते जाना है, फल अपने आप बाबा देगा। ये भी एक बंधन है, क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी। तो जब उस बंधन से भी हम परे हैं और कर्म के प्रभाव से भी परे हैं, तब हम कहेंगे कि हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचे। जो हमने बाबा में देखा, मम्मा में देखा, दादियों में देखा, कैसे धीरे 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 कर्मातीत अवस्था को पाते पाते और फिर संपूर्णता को पाया, तो अवश्य हम उनके कदमों पर चल रहे हैं। परंतु सही रूप में कदमों पर चलने के लिए अवश्य हमें ये हर कदम पर ध्यान देना होगा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम वचन बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, क्या ये श्रीमत के अनुकूल है। क्योंकि बाबा ने श्रीमत की बहुत गहराई बताई है, इतना विस्तार बताया है, श्रीमत हर एक बात के लिए दी है। सोचो तो क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, कर्म करो तो क्या कर्म करो, सारी दिनचर्या कैसी हो, उठते हो तो उस समय क्या करो, सारे दिन में क्या करो, रात को सोते समय क्या करो, नींद भी कैसी हमारी होनी चाहिए, हर एक बात के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। और यहाँ तक कह दिया कि ऐसे नहीं कि जो समर्पित है वही ऊंच पद पाएंगे और जो परिवार में रहते वो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं, वो राजाई में नहीं आ सकते, ऐसे तो नहीं कहा है। और ही बाबा ने कहा है कि जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं पर सच्चे ट्रस्टी होकर रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का। बाबा का समझकर हर कदम उठाते हैं, वो भले परिवार में रहते हैं तो भी बहुत आगे जा सकते, वो भी वारिस है, वो भी वारिस है। तो इसीलिए जब बाबा ऐसे कहते हैं तो अवश्य इसमें भी कोई राज है, क्योंकि बाबा कहते पेट को पट्टी बांध करके भी कैसे बाबा के बच्चे इस यज्ञ को चलाते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ रहते हैं, भले समर्पित हैं या मधुबन में या सेवा केंद्रों पर, लेकिन ये सब बाबा का है, उसमें थोड़ा भी आनाकानी करते हैं, कुछ हेरा फेरी करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके लिए सजा 100 गुना है। तो इसीलिए बाबा कर्मों की गुह्य गति भी बहुत बताते हैं। तो इसीलिए उस अनुसार हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। वैसे तो अब सिंपल रीति से तो कहते हैं, हमको लोग पूछते हैं ना, आप लोगों का उद्देश्य क्या है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या कहते हैं, मनुष्य से देवता बनना, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन इतना तो सरल नहीं है ना, मनुष्य से देवता बनने तक कितनी पौड़ियां चढ़नी पड़ेगी। पहले तो ब्राह्मण बनते हैं, फिर उसके बाद फरिश्ता बनते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं, फिर देवता बनते हैं। और बाबा तो केवल धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, साथ साथ राजाई भी स्थापन कर रहे हैं, एक परिवार, एक कुल भी स्थापन कर रहे हैं। तो इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है, तो हम बाबा की इच्छाओं अनुसार कितना खरे उतरे हैं, वे हम अपने आप से पूछें। और बाबा ने हमें कसौटी भी दी है कि जो कुछ भी हम करते हैं, पहले ये देखें कि ये श्रीमद के अनुकूल है। श्रीमद के अनुकूल नहीं है तो हमें भी नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने जो हमें इतने खजाने दिए हैं, जो बाबा ने वर्णन भी किया, ज्ञान गुण शक्तियां तो है ही, लेकिन समय, श्वास, हाँ, संकल्प, ये भी हमारा बहुत बड़ा खजाना है। हम उसको भी कहाँ तक सफल कर रहे हैं, कहाँ तक सफल कर रहे हैं, समय को कहाँ तक सफल कर रहे हैं, कहीं व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं। हमें दादी जानकी का वो दृश्य याद आता है, एक बार दादी जानकी जी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, हम भी दादी के साथ ही थे, तो अखबार वालों को कुछ एक टाइम पर आना था, लेकिन थोड़े से अखबार वाले आए, पर दादी तो टाइम पर पहुंच गई, एकदम पहुंच गई। अभी अखबार वाले आ ही रहे थे और दादी तो समय जो दिया था उस पर पहुंच गई, वो थोड़ा लेट आए, धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन समय पर पहुंच गई। तो किसी पत्रकार ने दादी जी से पूछा, दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं है, तो आप एकदम एक्यूरेट टाइम पर कैसे पहुंचे, क्योंकि दादी तो विदेश में रहती है, तो विदेश में तो सब बिल्कुल जो टाइम देते हैं उसी अनुसार पहुंचते हैं, और भारत के लिए क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। 9 बजे बुलाया तो 9:30 तक तो कोई नहीं आएगा, उसके बाद आते हैं। तो दादी तो इतनी एक्यूरेट पहुंच गई, तो दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं, आप कैसे एकदम एक्यूरेट पहुंच गए। तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ, एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। तो घड़ी पहनने की क्या जरूरत है, हम लोग क्या कहते हैं, बार बार घड़ी देखेंगे, बार बार घड़ी देखेंगे, तो घड़ी एक भी गंवानी नहीं है। तो समय कितनी बचत करते हैं, और समय की बचत है उसके लिए एकाग्रता बहुत चाहिए, क्योंकि समय किसने व्यर्थ जाता है, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बोल में, व्यर्थ कर्मों में समय कितना जाता है। हम दादियों को देखते थे कितनी उनकी एकाग्रता। दादी जानकी को तो लेटली हमने बहुत कुछ देखा। एक बार हम दादी जानकी के पास गए थे किसी काम से शांतिवन में, तो दादी मुरली पढ़ रही थी। इतनी एकाग्रता से मुरली पढ़ रही थी जो यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखा। तो मैं धीरे धीरे जाके दादी के पास बैठ गई, पर दादी की आंख बिल्कुल केवल मुरली पर ही थी, केवल मुरली पर। और जब तक मुरली पूरी नहीं की पढ़ना, तब तक दादी ने आंख नहीं उठाई। और हम बैठे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दादी से सकाश ले रहे थे और कोई नहीं था रूम में। और मैं देख रही थी दादी कितनी एकाग्रता से पढ़ रही है। और फिर करीब 10 मिनट तक मैं बैठी रही, मैं भी बाबा को याद करती रही और दादी जी को देखती रही। और जब 10 मिनट पूरा हुआ, मुरली पूरी की, तो दादी ने आंख ऊपर किया, अच्छा शिलू तुम आई हो क्या। यानी एकाग्रता किसको कहा जाता है वो हमने दादियों में देखा। तो सचमुच, क्योंकि समय तो ये लोग व्यर्थ गंवाते ही नहीं है। दादी फ्री भी होती थी तो कुछ न, बड़ी दादी भी जब देखो मैगजीन पढ़ रही है। हाँ दादी, कितना हर समय को सफल किया। तो समय स्वा संकल्प जो बाबा ने कल भी कहा, एक आपका एक सेकंड, हाँ एक सेकंड ब्राह्मण का वो एक साल के बराबर है। आप सोचो तो एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना माना एक साल गंवाना, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तो हम भी अपने आप से पूछे, जबकि समय दौड़ रहा है तो क्या हम भी समय के साथ उतना ही दौड़ रहे हैं केवल, या उड़ रहे हैं? क्योंकि वो तो दौड़ रहा है, परंतु हमको तो उड़ना है। पर उड़ने के लिए क्या चाहिए? उड़ने के लिए हल्कापन चाहिए, ऐसे नहीं उड़ सकेंगे। क्योंकि जब तक हल्के नहीं हुए हैं तब तक उड़ना सहज नहीं है। हम तो देखते ना, जो हवाई जहाज का पेट्रोल होता है वो इतना हल्का होता है, बात मत पूछो, हमने देखा है। अब डीजल और पेट्रोल डालते कितना भारी होता है, पर हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है वो इतना हल्का होता है। हाँ, मैंने ये कहाँ देखा, हम आसाम गए थे तो वहाँ तो क्रूड ऑयल वो धरती से निकलता है और वहाँ ऑयल रिफाइनरीज है आसाम में। तो एक ऑयल रिफाइनरी में हमारा प्रोग्राम था आसाम में, तो हमको पहले दिखाया उनके एग्जीक्यूटिव्स का के साथ हमारा प्रोग्राम था। तो पहले हमको कहा कि बहन जी आप ये देखो हमारी रिफाइनरी कैसे ये तेल रिफाइन होता है, क्रूड ऑयल इतना मोटा मोटा होता है, बात मत पूछो, इतना काला, इतना बांस वाला, क्या क्या होता है जब वो धरती से निकलता है। तो बताया कि कैसे एक एक चीज उसको किसको कैसे रिफाइन करते हैं। तो पहली चीज क्या निकलती है, ये टार निकलता है, जो जहाँ रोड बनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, डामर, वो डामर निकलता है, वो रोड बनने के काम आता है डामर। फिर वो हमको दिखाया, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो वैक्स, ये क्या मोम जिससे मोमबत्तियां बनती है, वो दिखाया। फिर उससे आगे गए तो दूसरा कैसे तेल निकला, वो उसे साबुन बनाते, मतलब 14 धातु 14 चीजें वो उस क्रूड ऑयल से निकलती है, वो साफ होता जाता है, कोई फेंकते नहीं, वो काम आता है अलग अलग चीजें बनाने में। और आखिर में जाके वो हवाई जहाज का पेट्रोल बनता, बिल्कुल हाथ किया तो जैसे पानी की तरह, बिल्कुल पानी से भी हल्का। नहीं तो हवाई जहाज को तो इतना भारी तो पेट्रोल तो ऐसे नहीं डालेंगे, एविएशन फ्यूल अलग ही होता है जो हवाई जहाज के काम आता है। तो कितना हल्का होगा, क्योंकि हवाई जहाज को भी हल्का होकर के उड़ना है ना, कितना बोझ होता है उसमें, लेकिन फिर भी कितना हल्का होकर के उड़ता है। तो बाबा जब हमें कहते बच्चे तुमको डबल लाइट बनना है तभी उड़ सकेंगे, तो डबल लाइट कैसे बनेंगे? कोई भी प्रकार का बोझ न हो। अब बोझ हम खुद ही उठाते, बाबा तो कहते अपना बोझ मुझे दे दो, तो क्या सचमुच हम अपना बोझ बाबा को दे रहे हैं या उठाते हैं खुद? या ये समझते बाबा को इतने सबका बोझ है, मेरा क्यों उठाएगा? हाँ, मेरा भी उठाए, मैं उठा लूंगा ना। हम कई बार देखते ट्रेन में सफर करते ना, तो सामान बहुत होता है, अब खुद तो उठा नहीं सकते तो कूली करते हैं। तो कूली क्या कहता है, लाओ लाओ लाओ, एक पेटी सिर पर रखा, फिर दूसरी पेटी रखा, तीसरी पेटी रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, हाथ में लिया। हम कहेंगे कितना उठाएगा, इतना उठाएगा? कहता दो दो दो, और वो इतना उठा करके दौड़ता, हम लोग पीछे करते जाते। थोड़ा सा एक थैला ही उठाते हैं तो हम हाँफते हैं, और वो तो इतना सामान लेकर के दौड़ता है। तो किस आधार पर दौड़ता? हल्का है ना, और हम लोग उठाएंगे थोड़ा सा और धीरे धीरे चलेंगे, हम तो नहीं उठा सकते इतना। तो कहेंगे भाई वो कूली कितना हल्का है, कितना बोझ उठा लेता है। तो भगवान भी कहते हमको बोझ दे दो, और हम क्या समझते हैं बाबा को इतना बोझ क्यों दे, कितनों का उठा रहा है? और वो तो कहते हैं दो दो दो, और हम कहते हैं कि कैसे बाबा आप उठाओगे? ऐसे सोचते हैं क्या? सोचते हैं थोड़ा बहुत, कभी कभी सोचते होंगे ना, बाबा को क्यों बोझ दूं, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। और बाबा कहते बोझ मुझे दो, जो भी तुम्हारे अंदर किचरा है ना सब साफ कर दो। और बाबा ने एक बार कहा था मुझे बता दो और हल्के हो जा, बाबा को दे दो जिम्मेदारी, बाबा को दे दो। लेकिन ये जिम्मेदारी बाबा को तब देंगे, तब दे सकेंगे जब उसकी स्टेप्स होती है, उसकी स्टेप्स होती है, उसके कदम होते हैं, जिसके आधार से हम सचमुच बाबा को दे सकते हैं और हम हल्के हो सकते हैं। और वो नहीं करते इसीलिए हम भारी हो जाते हैं। तो हल्के नहीं होंगे तो फिर उड़ेंगे भी नहीं। हाँ, मुझे याद आता है एक बार एक बहन शिविर में आई थी, तो बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, मतलब टेंशन में ही थी। उसका बेटा, वो क्या है आजकल युवा पीढ़ी कैसे बुरे संग में जाते हैं, तो इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा थोड़ा था लेकिन ज्यादा नहीं था। तो उसने कहा आपको हम माउंट आबू लेके चलते हैं, आप वहाँ मेडिटेशन करो। अब बच्चे से बहुत परेशान थी, तो मुझे बताया गया कि ये अपने मना बच्चे से कैसे व्यवहार करती और बच्चा क्या करता मुझे बताया गया। तो जब मैं उनसे मिली तो सबसे पहले कहा बहन जी मुझे तो बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया सारा। तो हमने उसको कहा कि देखो सबसे पहले तो क्या अपने बच्चे को कहती थी, जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ, हर बार मर जाओ कहती थी। अब वो बेटा जितना उसको कहे ना, क्योंकि शराब पी के आता था या कोई ड्रग्स लेता था तो देर से आता था घर में, तो माँ तो बहुत परेशान होती थी, जागती रहती थी जब तक घर में नहीं आया है, और आते ही कहती थी मर जाओ। अब वो जितना वो गुस्सा करती थी उतना ये और पीता था। अब टेंशन में थी तो कहती बहन जी मैं इसको कैसे खत्म करूं? तो मैंने कहा देखो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप जो कहती हो मर जाओ सचमुच आप चाहती हो मर जाए, आप चाहती हो? कहती नहीं, वो तो एक ही बेटा है मेरा, मैंने भगवान को कितनी मान्यताएं की, मानी माना उस अनुसार भगवान ने बेटा दिया। तो जब आपने इतनी मेहनत की, भगवान की मान्यताएं मानी माना और बेटा मिला, तो आप क्यों कह रही हो मर जाओ, आप चाहती हो मरे? तो नहीं, ये भी नहीं चाहती हो, तो पहले कहती क्यों हो? तो कहती बहन जी बहुत गुस्सा आता है ना, क्या करूं, तो इसलिए मुंह से निकल जाता है मर जाओ। तो मैंने कहा बस आपको अभी क्या करना है, तो उनको कुछ स्टेप्स दिए। पहला स्टेप है ये बोलना बंद करो, मर जाओ ये शब्द कहना बंद करो। तो कहा अच्छा बहन जी फिर क्या करूं? फिर दूसरी बात, दूसरा कदम क्या है, ये जो बच्चा है आपका, बेटा है करीब 20-22 साल का होगा, ये जो बेटा है आपका इसको समझो ये भगवान की अमानत है, ये मेरी अमानत नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, जो मेरा समझते हो, मैं कहते हो, जो बाबा कहते हैं मैं और मेरा, ये मोह हटा दो, ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, ये बाबा का है बेटा, बच्चा बाबा का है, मेरा नहीं है। तो आप जब समझेंगे ये भगवान का है, तो आपका जो इतना भारीपन है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी चीज होगी तो आपको उस पर मोह होगा, तो आप जरूर चिंतित होंगे, ये भगवान का है। फिर तीसरी बात देखो कि उनकी विशेषताएं देखो, उनके अंदर गुण भी होंगे, ऐसे नहीं कि गुण नहीं होंगे। तो कहते हैं हाँ गुण तो बहुत है, हाँ गुण तो बहुत है, तो वो जो भी कुछ करता है ना हमेशा बताता है, छिपाता नहीं है। अब मैंने कहा बताता है तो बहुत बड़ी बात है, आजकल के बच्चे बताते भी कहाँ हैं, कितना छिपाते, कुछ भी नहीं बताते, क्या करके आते पता भी नहीं। आजकल तो माँ बाप भी क्या करते, CID रखते हैं बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। और बच्चा आपका सच बताता है और आपको सब बताता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका कितना बड़ा गुण है। आप इसका गुण देखो, तो जब भी आप इसका गुण देखो कि ये सच्चा है, बताता है, जो भी कुछ भी करता है बताता है, तो ये सच्चा है और ये भगवान का बच्चा है। और फिर चौथा काम ये करो, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छी आत्मा, ये बदल जाएगा। और पांचवी बात ये रखो कि ये बोझ बाबा को दे दो, शिव बाबा अभी आप संभालो, आप संभालो। ये पांच बातें करो, पहला जो मुख से बोलती हूँ ना, मर जा, इसको बंद करो, आपको बदलना है। वो तो बदलेगा नहीं, ऐसे नहीं बदलेगा, पहले आपको बदलना है, बोलना बंद करो। दूसरा वो भगवान का बच्चा है, तीसरा हाँ वो जो उनके गुण देखो, चौथा उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को रखो, शुभ भावना, शुभ कामना बदल जाएगा। और पांचवा ये बोझ बाबा को दे दो, भगवान को दे दो, और 3 महीने के बाद मुझे लिखना कि उस बच्चे की स्थिति कैसी है। तो उसने 3 महीने के बाद क्या लिखा, बहन जी मेरा बच्चा तो बदल गया, एकदम बदल गया। तो मैंने कहा अच्छा आप दोबारा आ जाओ मधुबन और बच्चे को लेकर के आओ। तो बच्चे को लेकर के आई तो मैंने बच्चे से पूछा कि आप कैसे बदल गए, कैसे बदल गए। तो उसने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा मेरी माँ बदल गई ना मेरी माँ बदल गई, और मैं माँ को चिढ़ाने के लिए और करता था, क्योंकि वो गुस्सा करती थी, मैं और करता था माँ को चिढ़ाने के लिए। अब माँ ने मुझे ये सब बोलना बंद कर दिया, और मैं जब भी जाऊं तो बहुत प्यार से मिलती थी, बहुत प्यार से व्यवहार करती थी, और वो उनकी जो वाइब्रेशंस हमको बहुत अच्छे आने लगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं माँ का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, क्योंकि एक गुण तो था ना सच्चाई, सत्यता का गुण उसमें था, तो वो सच बताना चाहे कैसा भी काम किया। तो ये जो गुण था उसके कारण माँ उसी उनकी अच्छाई को ही देखती रही, देखती रही, देखती रही, और जो रिएक्शन होता है वो कुछ भी नहीं किया, तो धीरे धीरे बच्चा बदल गया। तो हमने माता को कहा कि देखो माता ये चमत्कार हो गया, क्योंकि आपको बदलना है, और हम क्या समझते हैं दूसरा बदले, वो बदले, वो बदले, वो नहीं बदलता तो हम भी क्यों बदले। और बाबा क्या कहते हैं, पहले खुद को बदलो, है ना। तो मुझे बदलना आज भी वरदान यही था ना, या स्लोगन था, पहले खुद को बदलना है, स्व परिवर्तन। ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, भी वो जो करता है वो हर एक का अपना कर्म है ना, हर एक का अपना हिसाब किताब है। वो जो आपके सामने है, वो किस जन्म में किस क्या कर्म कैसा किया होगा, इस जन्म में आपका कोई बेटा बना, कुछ बना। तो जब बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति इतनी बता दी है, तो हम जो व्यर्थ सोचते हैं वो व्यर्थ क्यों सोचते हैं, या तो मैं या तो मेरापन, मेरा, मैं और मेरा। और बाबा कहते ये मैं और मेरा को खत्म करो, इसलिए मैं और मेरा की बजाय बाबा कहते मैं मेरा कहना भी है तो क्या करो, मैं आत्मा और मेरा कहना है तो मेरा बाबा, बस बाकी तो सब आत्मा ही है। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई है, कोई क्या संबंध, कोई क्या संबंध, कोई क्या संबंध। और सचमुच उसको ही कहेंगे ट्रस्टी, ये तन भी मेरा नहीं, ये तन भी बाबा का समझना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते ये बाबा का समझना, तो इस तन से हम वही कार्य करेंगे जो बाबा की श्रीमत है। ये मन बाबा का, तो मन से वही सोचेंगे जो बाबा ने श्रीमत दी है, तो व्यर्थ कहां से आएगा। ये धन भी वही लगाएंगे जहां बाबा की श्रीमत है। अगर बाबा की श्रीमत नहीं है तो हम धन वहां नहीं लगा सकते। ये समय श्वास संकल्प ये सब जो जहां बाबा की श्रीमत है उस अनुसार ही हम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि श्रीमत में ही कल्याण है। कल भी बाबा ने कहा ना, परसों बाबा ने कहा मनमत ऐड की या परमत ऐड की, बाबा कहते तो हैं लेकिन कैसे होगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने ये सोचा क्या कि बाबा शिव बाबा कहते तो हैं ये माताओं के आगे सुपुर्द कर दो, विल कर दो माताओं के नाम पर। तो बाबा ने एक आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। तो बाबा ने कहा मैं बाबा भूखा रह गए क्या। ब्रह्मा बाबा मिसाल देते हैं अपना, पर शिव बाबा ने जो कहा उनको तुरंत फॉलो किया और एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा अपने तन मन धन का, अपना श्वास संकल्प शक्ति जैसे वो बीज डाला। और देखो आज उसी का परिणाम स्वरूप ये वट वृक्ष या ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितना दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रहा है, इतना फैला हुआ है। ये सब किसकी शक्ति थी, शिव बाबा की तो है लेकिन ब्रह्मा बाबा की कम नहीं है, और हमारी दादियों की तपस्या कम नहीं है। हाँ भले कहेंगे सबका योगदान है लेकिन बाबा मम्मा दादियों की तपस्या जिससे इतना पावरफुल वातावरण मधुबन का बना है, या जो भी बाबा की इतनी सेवाएं हो रही है, इतनी जो आत्माओं को टचिंग आती है, टचिंग आती है। अभी तो बाबा कहते वो समय आएगा हाँ जब अपने आप साक्षात्कार होंगे। ये साक्षात्कार का समय भी अभी दूर नहीं है, और वो साक्षात्कार होंगे और कैसे आत्माएं खींची हुई आएगी। आपका साक्षात्कार होगा, देवियों का साक्षात्कार होगा, देवता रूप में आपका ही साक्षात्कार होगा। एंजल्स जब बाबा कहते हैं ना, तो एंजल्स कौन होंगे, फरिश्ते कौन होंगे, हम ही तो बनेंगे। तो जो हम बनने वाले उनका साक्षात्कार पहले से होगा। पश्चिमी दुनिया में आप जाइए, पश्चिमी दुनिया में एंजल्स को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। वहां तो हर बिल्डिंग में, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, एक एक बिल्डिंग के ऊपर फरिश्ते दिखाते हैं। पूर्व में जाइए तो देवी देवताएं बहुत दिखाते हैं, बुद्ध बौद्ध धर्म में भी है बहुत ये देवताएं। तो अंत में उनका साक्षात्कार होगा ना, फरिश्तों का साक्षात्कार करेंगे लोग। तो पूर्व में देवी देवताओं का साक्षात्कार और पश्चिम में फरिश्तों का साक्षात्कार, ये अवश्य होना है। तो समय हमें संकेत दे रहा है कि हम कितने तैयार हैं। कल कोई बता रहा था, हंसी में बताया कि अगर कोई बहन रोती है, अब उनका साक्षात्कार हो जाए तो देवी रोती हुई दिखाएंगे क्या। रोती हुई देवी होती है क्या, देवी कैसे होती है, सदा मुस्कुराती हुई। ऋषियों को दिखाया है गुस्सा करते हुए, अब देवताओं को दिखाए क्या गुस्सा करते हुए। ऋषियों को दिखाते हैं हाँ विश्वामित्र वो कौन था, वो दुरासा इतना क्रोधी, जो बात मत पूछो ऋषियों को। लेकिन देवताएं वो तो साक्षात्कार मुहूर्त है। तो वर्तमान समय तो हम राज ऋषि है ना, राजाई के लिए ऋषि बने, पर ऋषि बनने का मतलब क्या है? हा? घर ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान। ऋषि लोग कोई सन्यासी नहीं होते थे, ऋषि तो उनका परिवार होता था ना। जितने भी ऋषि दिखाते हैं वो परिवार में थे, तब तो भी तपस्वी थे। तो वो हमारे जो परिवार में रहते हैं वो सब राज ऋषि है, और बाबा ने तो हमें बेहद का सन्यासी बना दिया है। दुनिया को कहां से कहां छोड़कर जाएंगे, कहीं कहां जाएंगे, जाना तो है ही नहीं, यहीं रहना है, इस संसार में ही रहना है। छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन कैसे ही बनेंगे ऋषि जब छोड़ेंगे भी नहीं पर फंसेंगे भी नहीं। ये भी एक कला है। जब हम कहते हैं ना राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है, तो जीवन जीने की कला क्या है? कला हो, कला किसको कहेंगे? अब चलना भी एक कला है, चलना तो हम सब करते हैं, लेकिन वो कला कब बनेगी चलना? जब हम रस्सी पर चलेंगे। वैसे चलना कोई कला नहीं है, पर रस्सी पर अगर कोई चले वो कला है, उसको लोग देखने जाते हैं। वैसे ऐसे हाथ करना कोई कला नहीं है, लेकिन वो ऐसे हाथ करते करते नृत्य बन जाए वो एक कला है। बोलना कोई कला नहीं है, सब बोलते हैं, लेकिन वो बोलना ऐसे पंक्तिबद्ध हो और बिल्कुल सिस्टमैटिक हो, एक विषय पर हो, और उस अनुसार एक हम उनका पहले हम भूमिका बनाए, फिर उसका कंटेंट बनाए, फिर आखिर में सार रूप में बताए, एक भाषण बन जाए, वो कला है। देखना तो एक देखना है, लेकिन हम बाबा कहते उस आत्मिक दृष्टि से देखे, ये कला है। बोलना कला नहीं है, लेकिन किसी को हम ऐसे बोले जो उसको सुख मिले, उसको खुशी मिले, वो कला है। हम कहते हैं ना ये 2.5 इंच की जुबान है, चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए। 2.5 इंच की तो जुबान है ना, बोल जो हम बोलते हैं 2.5 इंच की जुबान है, लेकिन किसी को तख्त पर बिठाए या किसी को तख्ते पर चढ़ाए, फांसी दिलाए, ये 2.5 इंच की जुबान है। तो जुबान तो वही है, हर एक को है, परंतु वही जुबान किसी को सिंहासन पर बिठाएगी और वही जुबान किसी को फांसी पर लटकाएगी। तो ये भी कला है ना, जो हमारे बोल ऐसे निकले, इतने सुखदाई निकले, जो सचमुच हम सबका दिल जीते। ये भी हम कहते हैं हथियारों से कोई किसको जीत नहीं सकता है, हथियारों से कोई किसी को हरा भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास हथियार है तो उनके पास कम है क्या? कोई किसी को नहीं हरा सकता है, लेकिन मीठे वचन से उनका दिल जीत सकता है। तो किसी को हराना नहीं है, परंतु उनको उनका दिल जीतना है। वो अपने आप झुक करके आपके पास आए, वो तब होगा जब हमारे बोल इतने इतने एक एक बोल रत्न समान हो। मैं कई बार अपना अनुभव सुनाती हूँ कि बाबा ने इस आत्मा को ये वरदान दिया था, तो मैं उस समय हैदराबाद गई थी। हैदराबाद में नागार्जुना फर्टिलाइजर्स का प्रोग्राम के उनके वहाँ प्रोग्राम था, तो मुझे दादी ने कहा कि उनके एग्जीक्यूटिव्स को मेडिटेशन सिखाना है, तो मैं वहाँ 3 दिन गई थी। और उसके बाद वो इतने प्रभावित हुए जो फिर वो सब के सब मधुबन में आए थे, और उस समय बाबा से मिले तो हिंदी तो जानते नहीं थे, इंग्लिश बोलते थे, तो मैं एक एक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही थी। तो ट्रांसलेशन जब सबका पूरा हुआ, सब बाबा से मिल लिए, तो मैंने सोचा अभी मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैंने ट्रांसलेशन के लिए मैं ऊपर स्टेज पर आई थी। तो जैसे मेरा पूरा हुआ तो मैं लास्ट में गई बाबा के सामने, बाबा से टोली जैसे लेने, तो बाबा ने टोली हाथ में देके बहुत पवित्र बहुत पावरफुल दृष्टि दी, और हाथ को दम जैसे पकड़ा, शक्ति भरी। और बाबा ने उसी समय ये महावाक्य उच्चारण किए कि बच्ची ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है। ये बाबा ने मुझे उस समय वरदान दिया। मैं तो हैरान हो गई। बाबा तो कई प्रकार के वरदान देते, लेकिन ये वरदान तो किसी को ऐसे नहीं मिला था। तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है, ये बाबा ने कहा। और बस प्यार से दृष्टि दी और तोली दी, हम आ गए। अब उस समय तो मैं तो उसी नशे में थी जो सुधबुद्धि भूल गई मैं। लेकिन जब मैं नीचे आई तो थोड़ा होश तो आया, तो मुझे सब जो, क्योंकि माइक पर बाबा ने बोला था तो सभा बैठी थी, सब बाबा के सामने बैठे थे, तो उन्होंने सुन लिया। तो कोई कोई तो चिढ़ाने लग गए मुझे, मधुबन वाले, कि वाह वाह वाह, बाबा ने तो आपको सरस्वती का टाइटल दिया, संगम पर सरस्वती, तो भविष्य में तो लक्ष्मी बनोगी। मैंने कहा थैंक यू, वरदान दे दिया आप लोगों ने भी वरदान दे दिया। लेकिन मेरे मन में एक उथल पुथल किस प्रकार की आई, बाबा ने मुझे कहा इतना ऐसा वरदान जो दिया, तो मेरे मन में प्रश्न उठे, बाबा ने ये वरदान किस आधार पर दिया, बाबा मुझसे क्या कराना चाहते हैं। वो वरदान दिया जैसे मुझे तैयार किया कोई बड़े कार्य के लिए। तो उसी समय मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा, बाबा आपने ये वरदान तो दिया, और आप मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बाबा आप मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो बाबा मैं तैयार हूँ, आप मुझे जो जिम्मेदारी देंगे मैं तैयार हूँ। फिर मुझे दूसरा संकल्प आया कि बाबा ने इतना इतना बड़ा वरदान दिया, तो इस मुख से कभी भी ऐसे कोई शब्द न निकले जो ज्ञान युक्त न हो, क्योंकि सरस्वती के बोल कैसे होंगे, कोई अपशब्द होंगे या कोई दुखदाई शब्द होंगे क्या, दुखदाई तो नहीं होंगे, तो कोई ऐसे शब्द न निकले। और तो इसीलिए मुझे इस मुख से केवल ज्ञान ही बोलना है, ज्ञान युक्त बोलना है, जिन शब्दों से बाबा की सेवा हो, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे कोई डिससर्विस हो। बस ये दो मैंने अपने अंदर में संकल्प किए, और फिर टीवी के प्रोग्राम्स का निमंत्रण मिला, ये बहुत बड़ी सेवा हो गई। तो ये बाबा ने कराया। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।